यही रखो, जिस प्रकार से वो स्मरण करती है बच्चे को, बच्चे अपनी मैया को, वही स्मरण इसमें से ले लो और बाकी को हटा दो। किंतु इससे उनको तृप्ति नहीं। तब वो कहते हैं अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्ने जथा बच्छतरह क्षुधारता। बछड़ा भूखा, मैया गई चरने के लिए, शाम हो गई, बच्चे के पेट में कुछ नहीं, पुकारे भी तो कहां, मैया तो सुनेगी नहीं, मन मार करके मसोस करके बैठा है, बड़ी भूख लगी। शाम हुई, गैयाओं का देखा जैसे वो सब आ रही, उसकी मैया डकार रही और ये बछड़ा भी डकारने लग गया। आते ही देखा जैसे ये आ रही उसकी मैया, तो गृहस्थ ने उसको पकड़ करके उसको खूंटे में बांध दिया, जब मैया आएगी ये इसका दूध खा जाएगा, इसलिए बांध दिया। और गैया को भी आते ही बाहर से ही उसको भी लेकर के बांध दिया। और मैया और बच्चा दोनों सामने है, बच्चा उछल रहा है दूध के लिए किंतु जा नहीं पाया। घर से वो ले आया मटकी दूध दूहने के लिए, बच्चे को छोड़ न जा, और वो बच्चा उछल रहा है जाने के लिए मैया के, डकर रहा है, मैया भी डकर रही। उस समय में बछड़ा जो डकारता है किस लिए, दूध पीने के लिए डकारता है। इसलिए सीधे यदि वो गृहस्थ उसको छोड़ता है तो उसको ऐसे खींच लेता है गले से, जो रस्सी बंधी होती है, और रस्सी इधर ढीली करके तब खूंटे से उसके रस्सी को खोलती है, और खोलने के बाद में वो सीधा कहाँ जाता है, मैया के मुख से प्यार करने के लिए और प्यार पाने के लिए जाता है, तो न कहाँ जाएगा, वो एकदम जोर से दौड़ करके उसके तन में पहुंच जाता है, बड़ी जोर से उसको धक्का देगा, और मैया प्रेम के साथ में अपना दूध छोड़ देती है और दूध को बड़े आराम से पीने लगता है। जब पी लिया पूरा तो क्या करेगा, मैया को छोड़ करके इधर उधर टहलने के लिए चला जाएगा, फिर मैया की कोई जरूरत नहीं। इन्होंने सोचा जे मैं अपने वाणी से भगवान का गुणानुवाद करूंगा, कैसे इस बछड़े के समान डकारता है, जैसे अत्यंत बिहवल होकर के हृदय के अंतिम कोर से, किंतु थोड़ा सा दोष आ गया, किस लिए, दूध के लिए, तो मैं भी क्या भगवान को अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए पुकार रहा हूं, नहीं। इसलिए इसमें से क्या लिया जाए, केवल वाणी वाला अंश और बाकी छोड़ दो, जैसे ये पुकारता है ना, अब मरा मैं मरा, दूध नहीं जल्दी से पिला दो मैया, इसके लिए पुकारता है। हम लोग भगवान को पुकारते हैं बछड़ा जैसा पुकारते हैं क्या, नहीं। पुकारा भी, कोई दुख आया तो ना तो उसमें पुकार लिया थोड़ा सा, किंतु हम लोग ऐसा बड़े आसक्ति के साथ में, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इस तरह से उनको नहीं पुकारते हैं। इसलिए पुकारना हो तो वाणी के द्वारा भगवान का गुणानुवाद ऐसा ही होना चाहिए, जैसे कुएं में कोई गिर गया और पुकारे बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे भगवान का नाम पुकार। इसलिए उसमें वाणी का अंश ले, बाकी को उन्होंने देखा जिसे इसमें तो कामना है, इसलिए उसको छोड़ दिया। तीसरा लिया प्रिय प्रिय विषुतंग विषन्ना। विषुतंग विषन्ना माने, विषन्ना माने क्या होता है, विषण हो गई है, विषण माने क्या, विरस्य व्याकुल। अब विषुतंग माने क्या, विषुतंग माने प्रदेश, प्रदेश गया हुआ उसका प्रियतम है, ये ना प्रिया है और उसका प्रियतम, किंतु वो प्रदेश चला गया ना, जब प्रदेश गया तो वो उसकी पत्नी जो है, पत्नी नहीं प्रियतमा, इसलिए प्रियतमा और प्रिय कहा, पति और पत्नी नहीं कहा, पत्नी में कुछ गड़बड़ी हो जाती है प्रेम, उसमें गहने ले आओ, सुंदर कपड़े ले आओ और चीजें दो, उसमें भी सौंदर्य चाहिए। पति यदि कुछ नहीं देगा और स्त्री भी, पति भी यदि उससे नहीं पाएगा तो प्रेम टूट सकता है। विवाह होने से उनमें प्रेम है, विवाह नहीं होने से प्रेम नहीं रहे, और उसमें भी ये सब चीजों की जरूरत है। पत्नी यदि कुछ नहीं, जल गई, कुरूप हो गई, काम नहीं कर सकती, पति दूसरी शादी करेगा। इसलिए ऐसी के लिए उपमा नहीं दिया। पत्नी में विशेष करके एक बात और है, पति के साथ में जब तक की शादी हुई है, बच्चे नहीं पैदा हुए, तब तक तो खूब प्रीति है। पहला बच्चा हुआ तो उसका एक अंश बट गया बच्चे में, फिर दो बच्चे हो गए, तीन बच्चे हो गए, अब वो भाग होता चला गया। और यदि पांच छह बच्चे हो गए तो पति की कोई जरूरत नहीं है, बच्चों पर ही प्रेम सब आ गया, पति रह गया, भूखा रह गया प्रेम के लिए। इसलिए पति का नाम यहां पर नहीं लिखा, प्रिय और प्रियतम का। इसलिए कहते हैं जैसे प्रिया विदेश गए, परदेश गए, सुदूर प्रवास में गए, अपने प्रियतम की चिंता करती है। कैसे चिंता करती है? उससे भी लाख गुना अच्छा वो पहले वाला नहीं, पक्षी, उससे भी कोटि गुण उसकी अधिक चिंता करती है। और ये जो पुकारता है ना, उससे भी अधिक जो ही मिलता है। सखी अभी तक आए नहीं, आ जाने की बात थी, क्या गाड़ी में विलंब हो गया, कहीं गाड़ी उलट तो नहीं गई कहीं? और अब जितने आने का समय होता जा रहा है और हृदय व्याकुल होता जा रहा है, कभी घर में और कभी बाहर में जाकर के देख, अब तो नहीं आए। देखा जी स्टेशन से तो सभी गाड़ियां चली गई, टांगे रिक्शे सब चले गए, वो गाड़ी तो आ गई होगी, जरूर कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, व्याकुल हो जाती है। ऐसे हृदय से व्याकुल रहे और वैसे ही बर, यदि बच्चे हैं तो कहें अरे बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं आए, क्या हो गया? और ऐसे नहीं, वो जो शरीर से जो सेवा है, आने के पहले ठीक समय के पहले रसोई पहले से प्रस्तुत है, सुशीतल जल रख दिया है, झलने के लिए पंखे भी रख दिया है, सब प्रकार की, और बैठने के लिए पलंग भी सब ठीक कर दिए हैं, सब प्रकार की घर को लीप पोत करके सब ठीक कर दिया है, अंगों से सेवा। ये तीन चीजें इसमें हैं। इसलिए यहां पर तीनों चीजें और दोनों दोनों उदाहरणों से बहुत श्रेष्ठ है, विशेष करके प्रिया प्रियतम का भाव ही गोप कृष्ण और गोपियों का है। इसका इंगित हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने उसमें दिया है, यही गोपी भाव का। यहां पर श्रीमद् भागवत में पहले आरंभ, पूर्व राग से भी पहले चित्रकेतु महाराज जी ने उसमें इंगित किया। यदि भगवान के साथ में प्रीति हो तो कैसी होनी चाहिए? पहले तो कामना वासना शून्य, केवल कृष्ण के चरणों में प्रीति हो, उनकी सेवा पा सके। दूसरी बात, कैसे? चार प्रकार के संबंध भगवान के साथ में हो सकते हैं या होते हैं। पहला, हनुमान का राम के साथ में जैसे दास और प्रभु का जो सेवक और सेव्य का संबंध था, अधिकांश जगत के लोग इसी में रहते हैं, करीब करीब 90% ये समझो जितने भी भक्त लोग हैं। दूसरी बात, सखा का सखा के प्रति जैसा भाव होता है, उसमें हृदय दोनों का मिल जाता है, वो पलंग पर भी बैठ जाएगा। जैसे हनुमान, ये हनुमान जी हैं, अपने कंधे पर उनको बैठा लेते हैं, सब कुछ करेंगे, किंतु रामचंद्र जी के पलंग पर बैठ जाएंगे ये कभी नहीं होगा, उनके कंधे पर बैठ जाएंगे ये नहीं होगा, कंधे पर बैठाएंगे किंतु बैठेंगे नहीं। अब ब्रज के सखा क्या करेंगे, धत तेरी के कह करके उनके कंधे पर बैठ जाएंगे। सखा का जैसा अपना जूठा खा रहे हैं अच्छा लगा उनके मुख में, हनुमान करेंगे ऐसा? न सबरी करेगी, कोई भी नहीं करेगा। सबरी जूठो फलों को नहीं देती थी, फलों से चख लेती थी उस पेड़ का, और जो मीठा होता था उसको दूसरे दिन उस पेड़ से लेकर के उनके लिए रखती थी, अपना जूठा नहीं। हमारे विदुरानी जी ने भी जूठा नहीं दिया, उनको अपना सेव्य मान रही हैं, जूठा खिलाने के लिए उनके सखा लोग हैं, और मैया और बाप हैं, नंद और यशोदा जी खा रहे हैं, कुछ खाया, कुछ बच्चे को दिया खिलाया, कुछ खाया फिर उनको दिलाया। और एक और भी हैं जो जूठा खिला देती, कौन है? गोपियां हैं, वो सखाओं से भी अधिक। इसलिए ये दूसरा, और तीसरा है वात्सल्य भाव। भगवान के साथ में प्रेम करना चाहते हो प्रीति, तो जसोदा मैया जैसी, नंद बाबा जैसी, जिसको उद्धव भी दे करके बड़े आश्चर्यचकित रह गए, ऐसा भाव नहीं आया। नारद जी देकर कहने ऐसा भाव हमें नहीं आया। कृष्ण आंगन में खेल रहे हैं, अभी स्नान कराया मैया ने, धूल में लोटपोट गए, बस मैया डांट रही है खड़े होकर के आंगन में, फिर अब तुमको गोदी नहीं लूंगी, दूध नहीं पिलाऊंगी। कृष्ण देख करके मचल गए, मैया गोदी उठूंगी, और उनको उठा नहीं रहे, ऐसे हाथ देकर के ढपट रही है, दूध नहीं पिलाएंगी। और आए नारद जी, देखा इस परब्रह्म को, जिसको हम लोग ध्यान में भी नहीं पाते हैं, ब्रह्मा शंकर हम, और वो आज परब्रह्म मूर्ति धारण करके यशोदा मैया की दूध पीने के लिए, गोदी में चढ़ने के लिए मचल रहा है, ललक रहा है, और रो रहा है, आंखों से आंसू की धारा गिर रही है, और उसको ये डांट डपट रही है, जिसके मृत्यु भी जिसे भय पाती है, ऐसा वात्सल्य भाव कृष्ण के साथ में जोड़े। इसीलिए बाल गोपाल हुए हैं, बाल गोपाल की बहुत सी लोक सेवा करो। और सबसे उन्नत है मधुर रस गोपियों का जो भाव था, ये 1% से भी कम है, वो तो परम सौभाग्यवान लोग होंगे जिन पर गोपियों की कृपा होगी, ब्रज की धूली की कृपा होगी, ब्रज रसिक रसिकों की कृपा हुई होगी, बस वही उस चीज को पाएंगे, दूसरा नहीं पाएगा। हम लोग की कथा का उद्देश्य यही है मूल, गोपियों की भावना चैतन्य महाप्रभु जी इसको देने के लिए आए, अनर्पित चरण चिरात श्लोक में वही सर्वोत्तम भाव है, जिसको कृष्ण के इस और गोपियों के इस भाव पर लोभ हो जाता है, ये भागवत सुनने का सबसे उत्तम से उत्तम यही फल है। इसी को यहां पर बतला रहे हैं, ये चारों में से कोई एक भाव हो, जब हम अच्छी तरह से विचार करके देखेंगे, चित्रकेतु महाराज जी कितने दिनों तक साधु संग किए थे, कितना दिन, उनकी आयु कितनी थी, करोड़ों वर्ष, आप करोड़ों वर्ष में नारद कभी नहीं मिले होंगे, और बड़े बड़े रसिक भक्त उस समय कोई भी नहीं मिला होगा, उनको गोपियों की पहले जो बीत गई है द्वापर बीत गया है, उनकी कथाओं को चित्रकेतु महाराज सुने नहीं होंगे, क्या भागवत भी उस समय लुप्त हो गया होगा, यदि ऊपर से लुप्त हुए भक्तों के हृदय में होगा, इसलिए उस भावना को लेकर के यहाँ पर प्रिय प्रियम विषतम विषन्ना ये श्लोक आ रहा है। इसलिए श्रीमद् भागवत में बतलाया गया, ये भागवत में भागवत का ये लक्षण है, जिसमें कि वृत्तासुर का उपाख्यान में चित्रकेतु महाराज जी के इन भावों की उद्दीपना हुई है, ये उद्दीपन का भाव है। इसलिए श्रीमद् भागवत में पहली बार यहाँ पर एक इंगित मिला कि भगवान के साथ ही यदि प्रेम करना है तो सबसे ऊंचा भाव जो है प्रिया प्रियतम का भाव, मैं उनकी प्रियतमा हूं, वो हमारे प्रियतम है, यह भाव क्यों ना है। इसलिए चित्रकेतु महाराज जी का यह उपाख्यान बहुत ही सुंदर है, हम लोग इसी से यह शिक्षा लेंगे, और इसके बाद में हम लोगों की कथा यहां से आरंभ होगी। गौर प्रेमानंदे
सखीरी मेरे मन अभिलाषा होय, मदन मोहन के गुण गाऊ।
भक्त लोग त्राही त्राही करने लगे, उन लोगों ने विचार किया इस कि अत्याचार से हम लोग कैसे बचें। नारद जी भी उसमें सम्मिलित हो गए। नारद जी ने कहा भगवान को प्रकट कराने के लिए बस एक उपाय है, यदि प्रेम पूर्वक संकीर्तन किया जाए तो बहुत जल्दी से आएंगे और असुर को मार करके शांति मिल जाएगी। नींद भी, भगवान की जो नींद है वो कीर्तन से ही खुलती है, तो इसलिए सभी लोग मिलकर के अभी भट्टेश्वर जी कीर्तन करेंगे, जिससे कि सब लोग भी उठ जाएं। बांस की तरह होता है, जैसे नवाबों और नौ पुराना बांस होने पर सूख जाने पर वो टूट जाएगा, नए का नहीं। इसलिए बच्चों के ऊपर में खूब प्रभाव पड़ा। उन्होंने प्रहलाद महाराज जी से पूछा, तो भगवान को प्रसन्न करना तो बहुत बहुत कठिन है, तो हम लोग उनका कैसे भजन करें। उन्होंने प्रयास करना बहुत कठिन नहीं है, एक बात करो बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाएंगे। अभी सब लोग मिलकर के उनके गुणों का कीर्तन करें, देखो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए सब बच्चों को लेकर के प्रहलाद महाराज जी उस दल में मन सुखा भी था और सभी लोग मिलकर के खूब सुंदर कीर्तन करने लगे। इधर आ जाओ, जल्दी से कीर्तन कराओ। तो
चैतन्य नमने गौर गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुना पुत्रेति तन्मे तया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिनां कृष्ण। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मे मां भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै क्षिप्त्वाश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं।
आज प्रातःकाल प्रहलाद महाराज जी की हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज जी का उपाख्यान का वर्णन किया। इसके कुछ रहस्य भी हैं, उसको भी समझने की चेष्टा करनी। जैसे ये बतलाया प्रहलाद चरित्र के प्रथम कथा तो बंद कर दीजिए, ये बतलाया भगवान समदर्शी हैं, सबके प्रति समभावापन्न है, उनका किसी के प्रति ना तो द्वेष है न विशेष प्रेम है। तो भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, संतों का पक्ष लेते हैं और असुरों के विरोधी होते हैं, उन्हें मारते हैं, हत्या करते हैं, वध करते हैं, ऐसा क्यों होता है। कजने ठीक ही, ये देखने का भ्रम है जो भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, असुरों का विनाश करते हैं। वो किसी का विनाश नहीं करते, सबका ही प्रिय है, सबके सुहृद हैं। तब जब देवता दानवों में युद्ध होता है तो वो देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं, तो इसी के लिए प्रहलाद महाराज जी का यह उपाख्यान उसमें वर्णन किया गया। जैसे आग किसी की शत्रु नहीं है, किंतु कोई यदि व्यक्ति क्यों व्यक्ति कोई व्यक्ति आग में जल करके मर जाए तो यह किसका दोष? आग का दोष है ना उस व्यक्ति का। नदी है जमुना नदी, सबके लिए जल देती हैं, पानी देती हैं, जीवन देती हैं, और उसी जमुना में कोई आत्महत्या कर ले, डूब करके मर जाए, तो ये जमुना जी का ये उसके प्रति शत्रुता थोड़े है। कोई यहाँ पर बैठा है, सूर्य आकाश में उदित रहे हो रहे हैं, जहाँ पर कोई बाधा नहीं है वहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो इसका मतलब ये नहीं ये घर में बैठे लोगों को भी वो प्रकाश दें, उनका तेज तो वहाँ नहीं आएगा, धूप नहीं आएगी, तो यदि धूप लेना है तो बाहर में जाओ। ऐसे ही भगवान का स्वरूप है आनंदमय शुद्ध सत्व विशुद्ध सत्वमय है, तो भगवान को पाने के लिए उसमें वैसे ही शुभ गुण होने चाहिए, अपराकृत गुण होने चाहिए, तब तो वो समझेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए भगवान का किसी के प्रति द्वेष नहीं है। जो कुछ ये होता है तो ये काल कराता है। जैसे अभी दिन है, आप लोग सो क्यों नहीं जाते? अभी आधी रात हो जाए ना तो क्या होगा? अंधकार रात हो जाएगा, कोई बातचीत ना करे तो अपने आप आदमी सो जाएगा। इसलिए काल के द्वारा आदमी जगता है, सोता है, काल के अनुसार आदमी जन्म लेता है, मरता है, इसमें किसी का दोष नहीं है। भगवान साक्षी के रूप में व्यवस्था भर करते हैं, इसलिए सब कुछ भगवान ही नहीं करते कराते। कुछ लोग कहते हैं कि बिना भगवान की इच्छा से पत्ता तक नहीं डोलता, बात तो ठीक है। दुर्योधन और एक तरफ में अर्जुन है, दुर्योधन कहता है जे प्रभु आप विश्व ब्रह्मांड के नायक, हम तो कठपुतली हैं और आप कठपुतली को चलाने वाले हैं, अंदर बाहर में आप हैं, आप जैसा चलाते हैं वैसा ही मैं करता हूं। जनामि धर्मम नच मे प्रवृत्ति, जनम न धर्मम नच मे निवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं किंतु उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म भी जानता हूं किंतु उससे हमारी निवृत्ति नहीं होती। वो आप जैसे नचाते हैं वैसा नाचते हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है न गुण है, और यदि कुछ दोष है तो क्षम्यताम, आप क्षमा करें, आपने जो कुछ करा है वैसे ही मैं करता हूं, आपने लड़ाया मैं लड़ लिया, आपने कहा जे धोखा दो भीतर से तो हमने धोखा दे दिया, हमने पांडवों को जलाया, उनको कुछ नहीं दिया, ये सब आपकी ही लीला है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, ऐसे असुर लोग कहते हैं। भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त लोग कहते हैं कि यदि मैंने कुछ अन्याय किया ये हमारी स्वतंत्रता का हमारा ये दोष है, और अच्छा कर्म जो हुआ आपने जो प्रेरणा दे करके कराया तो उससे हुआ। इसलिए अभी हम जो कुछ कर रहे हैं अभी अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं, और जब प्रभु के भक्त हो जाएंगे, प्रहलाद जैसे हम लोग हो जाएंगे, हनुमान जी जैसे हो जाएंगे, उस समय जो कुछ वो लोग करते हैं प्रभु कराते हैं उनके द्वारा। भरत जी को, चित्रकेतु महाराज जी को और जय विजय, इनको प्रभु ने कराया तब उन्होंने किया, अपने मन से नहीं, इसलिए उनका दोष नहीं, ये तो ठीक है। किंतु अभी हम जो पाप कर्म करते हैं पुण्य करते हैं, प्रभु ने स्वतंत्रता हमको दी है, किंतु इस स्वतंत्रता का असद व्यवहार यदि करेंगे तो उसका भोग पड़ना पड़ेगा, तुम्हें चक्की में एकदम पीस देंगे, नहीं तो हलवा बना देंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक एक चीज का विचार करेंगे। इसलिए यह सब विचार करके हमको चलना चाहिए। चित्रकेतु महाराज जी भगवान के अब परिकर हो गए, पुत्र के मरने के बाद में, साधन भजन करने के बाद में, वो शिव जी के बंधु सखा जैसे हो गए हैं, वो परम मुक्त हों, उनकी वस्तु सिद्धि भी हो गई है। इसलिए उस समय में उनके जो व्यवहार हैं भगवान की इच्छा से अनुसार में होते हैं। उनके द्वारा भगवान ने देखा कि जगत के लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, इसलिए भगवान की प्रेरणा से जो कुछ किया उन्होंने किया। इसलिए उनको मत समझना जब उन्होंने शंकर जी के निंदा किए और इसलिए उनको दुर्गति होकर के वृत्रासुर होना पड़ा। नहीं, असुर की स्थिति में भी भगवान का भजन हो सकता है। प्रहलाद महाराज जी तो असुर भी थे, वृत्रासुर साधारण नहीं था, चित्रकेतु महाराज थे। उन्होंने उस अवस्था में भी इंद्र से लड़ाई कर रहे हैं और उस समय में भक्ति का अंतिम बातें सब महापरम महाभागवत जैसा कह रहे हैं। इसलिए चित्रकेतु महाराज जी का देवी जी के चरणों में या शंकर जी के चरणों में अपराध नहीं हुआ, बल्कि जो देखने वाले हैं जैसे ये देवी का दोष हुआ, किंतु देवी का दोष भी नहीं ले सकते। क्यों? अरे शंकर जी की अर्धांगिनी, वो भी परम मुक्त हैं, इसलिए उनका दोष हो सकता है? नहीं। उस समय में भगवान ने योग माया की शक्ति से उनको विचारों को मोहित करके उनके द्वारा जगत की शिक्षा के लिए ऐसा करा लिया, ऐसा समझना। और नहीं तो कहीं चित्रकेतु महाराज जी के चरणों में दोष हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, और नहीं तो देवी के चरणों में अपराध हो जाएगा। इसलिए खूब सावधानी से भरत जी को आसक्ति नहीं हो सकती। क्यों? वो सिद्ध हो गए थे, भागवत में लिखा। वो हिरण होकर के जब जन्मे तो उनको पहले पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था, या ब्राह्मण के बालक होकर के आए, पूर्व जन्मों की उनकी सिद्धि थी, अर्थात तो स्मरण सब था। हमको आपको दूसरों को बड़े बड़े महात्माओं को क्यों नहीं याद आती पूर्व जन्म की बातें? इसलिए कि वो भाव अवस्था में सिद्ध थे। भगवान उनके द्वारा ये दिखाना चाहते थे भावावस्था में आने पर भी प्रेम जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, कुछ कुछ अनर्थ रह जाते हैं। और उस समय यदि वो अनर्थ बढ़ गया, साधु संतों के चरण में यदि कुछ अपराध हो गया तो वहां से पतन की संभावना है। इसलिए साधुओं को सब समय सावधान रहना चाहिए, इस शिक्षा के लिए उनके द्वारा कराया। जय विजय की बात तो क्या, मैं समझता हूं कि जय विजय बड़े हैं ना सनक सनंदन सनातन बड़े हैं? कौन बड़े हैं? सनक सनातन कभी क्वचित जा सकते हैं बैकुंठ में, किंतु भगवान के चरणों की सेवा करना, उनकी सब प्रकार से दिन रात सेवा में मग्न रहना, इन लोगों के लिए संभव नहीं है। ये पीछे से सनक सनंदन सनातन नहीं कही, जबकि भाव जोग माया का प्रभाव भगवान ने हटा लिया। अरे मैंने ये क्या कर डाला, भगवान के नित्य परिकरों को जो कि नित्य भगवान की सेवा करते हैं, और मैंने उनको अन्याय से न समझने के कारण अभिशाप दे दिया, ये क्यों हुआ? आज तक तो मुझको किसी को मैंने अभिसंपात किया नहीं, इनको क्यों दिया? उस समय में भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना, महो प्रभो हमारा अपराध इनके चरण में हुई। क्या बात क्या थी? बात ये थी भगवान तो सभी रसों के नायक हैं, विषय हैं। वो विचार करें, मैंने सब रसों का आस्वादन किया, शांत दास सख्य बात्सल्य अथवा इनका हास्य अद्भुत करुण रौद्र भयानक विभत्स सबका मैंने आस्वादन, किंतु वीर रस मैंने आस्वादन नहीं किया। कुछ वीर रस का आस्वादन करना चाहिए प्रभु के अंदर में, इस भाव को देकर के। जय विजय जो उनके प्रिय सेवक थे, एकांतिक सेवक थे, ओह प्रभु की लड़ने की इच्छा हो रही है, क्यों हो गई? परम स्वतंत्र हैं, स्वाराट हैं, क्यों कब किसकी जैसी इच्छा हो जाती, क्योंकि कैफियत मांगने वाला उनसे कोई नहीं है, इसलिए इच्छा हो गई, इच्छा हो गई। मधुरा स्वसाधन की इच्छा कृष्ण को क्यों हो गई? हो गई, क्योंकि सब रसों के वो विषय हैं, इसलिए हो गई। कोई कैफियत नहीं चाहा जा सकता, इसलिए वीर रस साधन की इच्छा हुई। तो जय विजय उनके प्रिय सेवक ने सोचा कि प्रभु से मैं प्रभु की इच्छा को पूर्ण करना है, नहीं तो सेवक क्या? किंतु है ये बड़ी कठिन चीज, प्रभु के साथ में यदि अभिनय करके लड़ूं तब तो गड़बड़ होता, तो उनका मन भरेगा नहीं। इसलिए सचमुच में शत्रु का आवेश भाव रख करके और उनसे लड़ूं तो प्रभु के भी छक्के छुड़ा दूं, उनको भी वीर रस आस्वादन करवा दूं, तो हमारा ये भक्त भाव है। जैसे कृष्ण सोचते हैं जो हमको कोई ऐसे मिले, आज तक तो लक्ष्मी जी का प्यार मिला, उनकी सत्यभामा और रुक्मिणी का भी है भाव, किंतु कोई ऐसे मिलता जो हमको चोर चोट्टा धुरत ऐसे कहे, तो ऐसा कहने के लिए राधा जी का एक भाव हुआ, उन्होंने सब कुछ कह दिया उनको, कृष्ण की ये रसास्वादन हुआ। उसी तरह से वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए सोचा जो अभिनय से नहीं होगा, जब प्रभु आइए हमसे कुश्ती लड़े, सचमुच में इनको उस भाव से कुश्ती लड़ा दें और उनके साथ में युद्ध कर, किंतु हो कैसे, मैं इनका विरोधी कैसे बनूं? प्रभु से मन ही मन में कहा, प्रभु ये आप ही के द्वारा संभव है, जो हमको उस रूप में बना करके और तब हमसे युद्ध कीजिए। उन्होंने देखा जो सेवक की इच्छा भी कि मैं इनके साथ में युद्ध करूं और इनको वीर रस आस्वादन करा दूं, इसलिए प्रभु ने जोग माया का आकर्षण किया। जोग माया ने आकर के ठीक उचित समय पर अपनी वो सेवा करेगी। उन्होंने आकर्षण करके जोग माया ने परम निर्विकार उन ऋषियों को बैकुंठ में ले आई। ये जोग माया ने बुलाया, सनातन को क्या जरूरत थी जाने की, और उनको भी आकर्षण कर दिया गेट के ऊपर में, गेट पर खड़े हो गए, नंग धड़ंग वहां पर पहुंचे। इन्होंने बेताड़ा दिया, क्यों बेताड़ा? वो जोग माया अब अपना यहां पर कर्तृत्व नहीं रह गया, ये जोग माया अब करा रही है उस लीला का संपादन करने के लिए, इसलिए जोग माया ने इनके अंदर प्रवेश करके उसी समय में इनको लाई और उनके अंदर में अभिमान जैसा कोई चीज पैदा की। उनका ये सात्विक राजसिक तामसिक अभिमान नहीं था, वैकुंठ में वो जा ही नहीं सकता है, तो वहां पर देखा जैसे ये नंग धड़ंग होकर के धूल धूषित होकर के आ रहे हैं, इनको कोई ज्ञान ही नहीं है, अंततः कपड़े पहन करके चतुर्भुज होकर के परम दिव्यमान शरीर लेकर के आते, इसलिए उनको बेताड़ाते जिसे आप लोग भीतर नहीं जा सकते। और जोग माया ने उनके अंदर में क्या किया, ऐसे ही कुछ राजस भाव को ले आई। राजस भाव कौन? ये नहीं जोग माया का वैकुंठ का भाव, ये राजस नहीं, अर्थात वो लीला करानी थी इसलिए, और आकर के उन्होंने क्या किया, इनके समझ में नहीं आया कुछ और अपना जोग माया काम करा रही है। उन्होंने कहा अरे तू वैकुंठ में रहने योग्य नहीं है, प्रभु को किससे डर, किस बात का है जिसे तुम रोक रहे हो, तुम याराने के लिए योग्य नहीं है, तुम्हारे अंदर में राजसिक भाव है, और बस राजसिक भाव किसके अंदर, इनके अंदर ना उनके अंदर, किसी के अंदर तो नहीं, किंतु जोग माया का ऐसा करा दिया। बस साथ ही साथ में उनको क्रोध आया, जो क्रोध नहीं होना चाहिए वैकुंठ में, या इस जगत में भी भाव भक्तों को क्रोध नहीं होना चाहिए, वो क्रोध आया, अभी संपा तीन जन्मों के लिए जाओ तुम असुर हो जाओ। तो ये दोष किसका, जोग माया को हटाया जिस समय में भगवान ने दोनों पर से, वो उनके चरण में गिरने लगे, वो उनके चरण में, और दोनों मिलकर के भगवान के चरण, ये क्या हो गया? हम लोगों को कभी क्रोध नहीं आता, कभी हमको ऐसे राजसिक भावना नहीं, आज यहाँ पर कैसे आए? प्रभु जी ने कहा जी कोई चिंता मत करो, हमारी कुछ इच्छा है, वीर रस आस्वादन की इच्छा थी, ये दोनों की भी इच्छा थी, इसलिए मैं जगत में कुछ ऐसे काम करूंगा इनकी भी इच्छा पूर्ण हो जाए, मेरी भी इच्छा पूर्ण हो, और साथ साथ में जगत का भी कल्याण हो। जो इन लीलाओं का वर्णन सुनेंगे, वर्णन करेंगे, उन सब लोगों का ही कल्याण हो जाएगा, ऐसी लीला करूंगा। इस तरह से इसमें चित्र के उनका भी कोई दोष नहीं, उनका भी कोई दोष नहीं, इसलिए तत्वज्ञानी लोग इस रूप में इन चीजों को दर्शन करते हैं। इसलिए इन लोगों में, भरत में, चित्रकेतु महाराज में और जय विजय में कोई दोष नहीं था, वो तो भगवान की लीला अवतारण करने के लिए उन्होंने आशा किया। दूसरी बात, आज हम लोगों ने हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष का की कथा सुनी। हिरण्यकश्यपु माने क्या, क्यों नाम दिया गया? ये तो जय विजय थे, इनका शुद्ध नाम तो जय और विजय है, तो जब वो जन्म लिया इस जगत में तो हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष क्यों हुआ? असुर किसको कहते हैं? द्वौभूते लोकेस्मिन दैव आसुरे वच विष्णु भक्तो भवेत् दैव आसुर तद्विपर्यय। असुर को लंबी पूंछ और सिंह होती है ऐसी बात नहीं, बड़े सुंदर सुकांत होते हैं। हिरण्यकश्यप भी वैसा ही था, बलि महाराज थे, प्रहलाद महाराज थे, बड़े सुंदर सुकांत थे। किंतु इसलिए कहा जाता है कि असुर लोग भगवान के विरोधी होते हैं और देवता लोग भगवान के भक्त होते हैं। हिरण्यकश्यप, अब असुर किसको कहते हैं, किसको? असुर कहते हैं जो ये समझते हैं कि जितनी सुख और शांति है ये सब कुछ अर्थ पर निर्भर करती है। अर्थ माने सोना, जिसके पास में सुवर्ण है, अर्थ है, जितना ही अधिक है उतना ही जगत का प्रभु होगा वो, और उतना ही सुखी और शांति होगा। इसलिए इस विचार के रखने वाले जितने हैं वो सब हिरण्यकश्यप हैं। उस समय एक था और इस समय 99% नाइन रेकरिंग तक सब असुर हैं। यहाँ तक कि जो घर बार स्त्री पुत्र छोड़ करके आए हैं वो भी बैंक में और पॉकेट में रुपया रखते हैं, वो सोचते हैं कि इसी से हमको शांति और सुख होगा। इसलिए जिनकी आँख हिरण्य हिरण्याक्ष हिरण्य अक्ष, अर्थात जिनकी सोने पर ही नजर है, हिरण्य माने स्वर्ण, उस पर नजर है, इसलिए वो हिरण्याक्ष है। और कश्यप बोलना है सोना, बिछौना, खाट, पलंग, खाना पीना, भोग, इसको कहते हैं कश्यप। तो हिरण्य खाना पीना सोना भोग करना, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खूब खाओ पियो मौज करो, खूब इतना मद्यपान करो, मद्यपान करते करते पित्वा पित्वा जवन न पतति भूतले, वो पृथ्वी पर न गिर जाए और कुत्ते उनको मुख टूख न धो दें। नहीं, कैसे कुत्ते मुख धोएंगे? तो ऐसी स्थिति, ये बड़ा सुख है, कहाँ सोए हैं, क्या कर रहे हैं, इन सब लोगों का नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। प्रहलाद महाराज जी कौन है? प्रकृष्ट रूपे ने ह्लाद और ह्लादिनी शक्ति युक्त जो चिन्ह में अपराकृत आनंद है उसको अपने हृदय में जो धारण किए हुए हैं वो प्रहलाद है। किसी भी स्थिति में उनको निरानंद नहीं रहता है, वो भोगों के लिए ललकते नहीं है, भोग जित में जितनी अधिक है उतना ही अशांत है। प्रहलाद महाराज को भगवान दे रहे हैं और कह रहे हैं जैसे हमको, मैं बनिया नहीं हूं, मैं बनियागिरी करने के लिए आपसे प्रेम नहीं किया, यदि मांगने की भी इच्छा है तो वो समस्त दूर हो जाए। इसलिए प्रहलाद महाराज जी बनिए नहीं, हम लोग बनिए हैं। शंकर जी के दरवाजे पर रंगेश्वर मंदिर में पहुंच करके सवेरे सवेरे वो टिप दाते हैं ना चौकट, बम 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 बम, भोलानाथ भोलानाथ, आशुतोष आशुतोष, और चौकट दबाते हैं। किस लिए? हमारा लड़का पास हो जाए, हमारा रोग दूर हो जाए, लड़के लड़की की शादी हो जाए, उसका असाध्य रोग दूर हो जाए। तो ये सब भक्ति नहीं है। जितना ही अधिक कामना रहेगा उतना ही व्यक्ति दुखी होगा, ये निश्चित रूप में है। ये संसार देखो, समझ लो, जो कोई इस संसार में लौकिक वस्तुओं के द्वारा शांति पहचाता चाहता है वो मूर्ख है। शांति कब होगी? एक तो इन विषयों को छोड़े, त्यागानंतरम शांति, त्याग करो। और सुख कैसे मिलेगा? भगवान की सेवा के द्वारा सुख मिलेगा। जब तक तू संसार के वस्तुओं को ग्रहण करेगा तब तक हिरण्यकश्यप का सैन्य सामंत तुम है, उनका सिपाही है। और जिस समय में ये सब छोड़ करके भगवान की सेवा के तरफ में आएंगे तो हम प्रहलाद के दल वाले, कीर्तन करने वाले बच्चे हैं, तब तो शांति हमको मिलेगी। इस चीज को अच्छी तरह से समझो। संसार में सुख शांति मत सोचो, ये तो कारागार है। भगवान को भूलने से हम इस कारागार में बद्ध हैं। यदि कोई शांति इस कारागार में चाहता है, यहां कारागार से छुटकारा पाना पड़ेगा, है ना? दूसरी बात है, वो पढ़ने के लिए कहां गए? शुक्राचार्य के पुत्र संडामर। संडामर्क माने क्या? बरसात कालीन हरी हरी घासों को या हरी हरी पौधों को खाकर पतला टट्टी करने वाला जो सांड होता है उनको संड कहते हैं। उसका गोबर पाथा भी नहीं जाएगा, लिपने के काम में भी नहीं आएगा बरसात का गोबर, तो ऐसा शासन अर्थात तो ऐसे कर्मकांडी जिनकी कोई भी काम भगवत भक्ति में नहीं आएगी इनको कहते हैं संड। और अमर्क किसको कहते हैं? संड माने जिनकी इंद्रियां वशीभूत नहीं है। कभी बाजार में जाता हूं, कभी देखता हूं कि दो सांड, एक काला एक लाल है, वो जाकर के साग की, जा साग होता है ना, तो ऐसा मुख लगाते हैं और वो पहले से डंडे लेकर के तैयार बैठते हैं, जंग गाय एक लाठी मारा, उस समय तो ऐसा कर दिया फिर लगा दिया, फिर वहां से गया अगली दुकान, गया दुकान में वहां पर भी मुख लगा और वैसे ही मारते हैं। तो ये है अवशीभूत अजितेंद्रिय व्यक्ति लोग जो विषय में ऐसे हाथ लगाते हैं, मुख लगाते हैं, और जम के दूत या ये सब जितने हैं, जितने रोग कष्ट दुख ये सब आते हैं, इसलिए जितेंद्रिय होना जरूरी नहीं तो नहीं। तो ये संड है। और अमर्क माने क्या? अर्क माने सूर्य, सूर्य माने प्रकाश। जहां प्रकाश नहीं है, ज्ञान नहीं है, भगवत भक्ति का भाव नहीं है, तो वो है अमर्क माने अंधकार। अंधकार माने अविद्या अज्ञान, जो इसमें भरे पड़े हैं, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, भगवत भक्ति का भाव नहीं है, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको कहते हैं अमर्क, संडा अमर्क। दोनों कौन हैं? एक तो शुक्राचार्य जी के पुत्र और हिरण्यकशिपु के गुरु पुत्र हैं। ये लोग सब समय परामर्श देते हैं। ये लोग परामर्श क्या देंगे? किस चीज का परामर्श देंगे? बस संसारिक चीजों के लिए परामर्श देंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने कहा क्या, पर कृष्ण मतिर न कृष्ण परतो सतो वा मिथो भी पद्दित गृह प्रतानम अदांत गोभी विशतं तमिश्च पुनः पुनश्चर्वित चर बनाना। प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु ने पूछा, पहले गुरु जी के लड़कों से पूछा, संडामर्क तुम मेरे गुरु के पुत्र ने आज तुम्हारा वध कर दिया होता, तुमने हमारे बच्चे की बुद्धि को बिगाड़ दिया। अच्छा, मैंने तो ऐसा किया नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करता? देखो ये हिरण्यकशिपु के अनुचर नहीं है, वो शुक्राचार्य की एक लड़की थी ना, याद है शुक्राचार्य की लड़की देवयानी, किससे शादी हुई? जजाति महाराज। उसने जाकर के लड़की ने जाकर के विश्वपरवा से कहा, विश्वपरवा ने अपने पिताजी से कहा, अरे आपने शादी दी और राजा विश्वपरवा की लड़की को आपने कहा जी इसकी नौकरानी हो करके रहेगी, दासी बन करके रहेगी, और इसको पुत्र कैसे हो गया? तो कुछ गड़बड़ी है, मैं वहां नहीं जाती, आप उसको हमारे पति को दंड दीजिए, ऐसा क्यों किया? वो विश्वपरवा के पास में जाकर के बोले, विश्वपरवा तुम्हारी लड़की हमारी लड़की की बराबरी करेगी, अभी अभी संपात दे दूंगा। थर थर कांपने लगा, कहे अपनी लड़की को हमारी लड़की की शादी होगी वहां पर दासी बना करके भेजना, डर से थरा करके किया कि नहीं? इसलिए ये गुरु पुत्रों से डरेंगे, गुरु पुत्रों से नहीं डरेंगे कि तुमके पिता से तो डरेंगे ना, यदि कुछ शासन कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया, अपने पिताजी जब सुनेंगे शुक्राचार्य तो क्या करेंगे? यदि अंगुली उठाई और उनके तरफ में वक्र होकर के देखा तो भस्म हो जाएगा, इसलिए वो डरता है, इसलिए उनको अधिक, अरे आपने ऐसा क्यों किया, हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया? अरे प्रभु हमने तो बिगाड़ा नहीं, ये तो नैसर्गिक बालो एम बदती, ये तो स्वाभाविक रूप से ऐसा कहता है, ये न जन्म के पहले से सिखाया है ना, कि कब सिखा मुझको पता नहीं। अरे दुष्ट कहां से सिखा बतला, कौन सिखाया? इन लोगों ने सिखलाया न, कोई छिपे हुए वेश में आया, कहीं नारद तो नहीं आ गया या कोई और तो नहीं आ गया? उन्होंने कहा मतिर न कृष्ण परतो सतो वा, अरे जो गृहंधकूप में खुद डूबे हुए हैं संडामर्क, ये मुझको क्या शिक्षा देंगे? अवांत गोभी विशतं चविश्र, अदांत गोभी माने जिनकी इंद्रियां अविश्व अजित इंद्रिय व्यक्ति जो विषयों में डूबा हुआ, चर्बित को भी चर्बन कर रहा है, जैसे कुत्ते कुछ खा लिया ना, कुछ खा करके फिर घास खा लिया, घास करके उल्टी कर दी और थोड़ी देर के बाद में जाकर के फिर उसी को खाते, ऐसे ये संसार के विषय लोग, एक लड़का मर गया और फिर दूसरा लड़का, अच्छा एक लड़के की शादी हुई, अच्छा फिर दूसरे की भी हो, तीसरे की हो जाए, नाती की शादी देख लूं, पर नाती की देख लूं, उसको भी बाल बच्चा हो जाएगा तब हम जाएंगे। इसी तरह से अदांत गोभी विशतांत मिश्र, चर्बित को चबाए हुए को ये चबाने वाले हैं ये गुरुजी। और दूसरा क्या है, अंधा जथा अंधा रूप नियमाना, एक अंधा दूसरे को रास्ता दिखलाने के लिए जा रहा है, इतने में गड्ढा आया, अपने भी गया और वो भी दोनों मरे, गुरु भी गया और चेला भी मरा, जो पकड़ कर ले जा रहा था वो भी, और जो ले जाने जिसको ले जा रहा था दोनों मरे ना। जिनका गुरु शुद्ध नहीं है, तत्वज्ञान संपन्न रसिक वैष्णव नहीं है, वो गुरु और चेला दोनों मरेंगे। इसलिए यदि पानी पीते हैं तो कैसे पीते हैं, और एक हणिया बाजार से लेनी है दो पैसे की, वैसे जैसे तैसे दे देगा ले लेंगे, उसके पास में एक डंडा रहता है, डंडा ले लो और बजाओ, तो यदि वो ठन ठन करती है तो लो पैसे, और खन खन किया तो फिर ठन ठन बजाने वाली लो, तो दो पैसे की हणिया लेते हैं। और जहां पर जीवन समस्त तो कुछ उनके जीवन में उनके चरणों में अर्पित कर रहा होता है, सर्वस्व उनके चरणों में दे रहे हैं, और बिना बजाए बिना बजाए जो कुछ कहा बस ले लिया, ऐसा नहीं। और नहीं तो वो गुरु तो जाएंगे ही और तुम भी उनके पीछे पीछे रसातल में चले जाओगे। तब मैं ये जो संडामर्क हैं, सब सब विषयों में लिप्त हैं, ऐसे लोगों हमको पथ नहीं दिखला सकते हैं। इन लोगों को कहने से मैं ऐसा नहीं कह रहा, किंतु किसने कहा ये नहीं बतलाया, किसने बतलाया था, नारद जी ने बतलाया, इसलिए उनको वो समझेंगे नहीं। बिना महत्पुरुषों की भगवान के चरण में प्रीति नहीं होती है। अरे तेरा गुरु नहीं जानता है, आ तू हमसे भी